हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। क्या कहा तुमने? सृष्टि गायब हो गई है?
जी सर।
अर्णव के तेवर एकदम से बदल गए। चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसका जफा जवाब दे गया और वो गुस्से से चीख पड़ा।
कब से गायब है वो? तुम कहाँ थे तब?
एक काम दिया था तुम्हें और तुमसे वो भी ठीक से नहीं हुआ। अब सांप क्यों सूंघ गया तुम्हें? जवाब दो मुझे कि जब तुम्हें उसकी निगरानी के लिए रखा था तो तुम्हारी नाक के नीचे से वो कहाँ गायब हो गई और तुम्हें खबर कैसे नहीं हुई?
सर, हम मुस्तैदी से अपना काम ही कर रहे थे। उनके घर के आसपास ही तैनात थे और एक मिनट के लिए भी यहाँ से वहाँ नहीं हुए। पिछले 3-4 दिनों से वो लड़की घर से बाहर नहीं निकल रही थी। अभी मौका पाकर मालूम किया तो घर के अंदर वो है ही नहीं। पता नहीं कब और कैसे यहाँ से निकल गई।
बेचारे उस आदमी ने डर के मारे सारी बात अर्णव को बता दी और अपनी खैर मनाने लगा, पर अर्णव ने उसकी बात सुनकर गुस्से में जबड़े भींच लिए।
इसी बात के पैसे लेते हो तुम? एक मामूली सी लड़की तुम्हें चकमा देकर भाग गई और तुम्हें खबर तक नहीं हुई। 3-4 दिन से वो गायब है और तुम इतने गैर जिम्मेदार हो गए कि जाकर एक बार उसे देखने की भी जरूरत महसूस नहीं की, और मुझे अब बता रहे हो ये सब बातें? कहाँ गई वो? पता लगाओ उसका। कल तक मुझसे वो लड़की मेरे चंगुल में चाहिए, किसी भी सूरत और किसी भी कीमत पर। समझे या नहीं?
समझ गया सर। मैं अभी अपने आदमियों को काम पर लगाता हूँ। मैंने पता करवाया है, वो लड़की शहर से बाहर नहीं गई है, इसी शहर में कहीं छुपी है। हम जल्दी ही उसे ढूंढ लेंगे।
उस आदमी ने अर्णव को आश्वस्त करने की कोशिश की, पर उनकी बातों से अर्णव की चिंता कहाँ कम होनी थी। उसने बिना कुछ कहे ही फ़ोन काट दिया और अपनी उंगली से अपनी भौं को मसलते हुए इस अचानक आई समस्या के बारे में सोचने लगा।
उसे सृष्टि के गायब होने की चिंता नहीं थी, बल्कि उसका गायब होना धृति के लिए खतरा था। सिर्फ धृति ही नहीं, माधुरी और कबीर भी उसका निशाना हो सकते थे, और यही उसकी परेशानी की वजह थी।
जब तक सृष्टि की कोई खबर नहीं मिलती, थोड़ा अलर्ट रहना होगा। धृति तो घर से बाहर निकलती नहीं, माधुरी और कबीर को भी यहीं रखना होगा और घर की सिक्योरिटी को टाइट करना होगा। सृष्टि किसी भी कीमत पर इन तीनों तक नहीं पहुँचनी चाहिए।
अर्णव अभी ये सब सोच ही रहा था कि उसके कानों में दरवाजे की आवाज़ पड़ी। अर्णव ने अपने सोच पर विराम लगाया और पीछे की ओर पलटा। ठीक उसी वक्त आगे बढ़ती धृति ने उसकी ओर निगाहें उठाईं और दोनों की नज़रें एक दूसरे से जा टकराईं। उस पल भर की झलक में धृति ने गौर किया था, उसके चेहरे पर तनाव के भाव मौजूद थे और माथे पर बल पड़े थे। कुछ परेशान लग रहा था वो, और आंखों में उसकी चिंता और बेचैनी झलक रही थी। दूसरे तरफ अर्णव ने भी उसे बागौर देखा था। बेरौनक आंखें, बेनूर उदास चेहरा, मुरझाए लब और थकान से भरा जिस्म। अर्णव की परेशानी मजीद बढ़ी थी और इसके साथ ही पेशानी पर पड़े बालों की संख्या भी बढ़ गई थी।
क्यों करती हो तुम सुबह से लेकर रात तक इतना काम? सर्वेंट किस लिए है घर में, जब सब काम तुम्हें खुद से करके ही खुद को बेवजह थकाना है? तो
अर्णव अपनी परेशानी भूल गया था और धृति की चिंता जता रहा था।
धृति ने उसके शब्दों में घुली परवाह तो महसूस किया, पर चेहरे पर कोई रंग न उभरा। वही भावहीन सपाट चेहरा और तल्ख भरा लहजा अर्णव के सामने था।
कितनी बार कहा है मैंने आपसे कि मत किया कीजिए मेरी परवाह, मैं खुद से अपना ख्याल रख सकती हूँ। वैसे भी मेरा शरीर मेरी मर्जी में, उसे काम कर करके थकाऊं या बिस्तर पर पड़े पड़े उसे आराम पहुंचाऊं, आपको कुछ भी कहने का कोई हक नहीं।
अर्णव की भौं तन गई उसका ये लहजा देखकर और उसकी बात सुनकर।
हक तो मुझे है और सिर्फ मुझे ही है। वो अलग बात है कि मैं तुम पर अपने किसी हक का इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि तुम्हारी इच्छा का सम्मान करता हूँ।
तो करे फिर मेरी इच्छा का सम्मान और मुझसे मेरे मामलों से दूर रहे, क्योंकि यही मेरी सबसे बड़ी इच्छा है, धृति ने खींचते हुए कहा।
अर्णव ने भी तुर्की बतुर्की जवाब दिया।
बहुत जल्द तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी हो जाएगी। जब मुझसे दूर चली जाओगी तो दूर रहूंगा तुमसे भी और तुम्हारे मामलों से भी, पर जब तक हम साथ हैं मुझे हर उस बात से फर्क पड़ेगा जिससे तुम्हें फर्क पड़ता है, और मुझे ऐसा करने से न तो तुम रोक सकते हो, न भगवान रोक सकता है और न मैं खुद रोक सकता हूँ।
अर्णव जो पहले से परेशान था, धृति से हुई बहस ने उसके सोए गुस्से को जगा दिया था। माहौल गर्म हो गया था और अर्णव का ये सख्त रवैया, गुस्से से झुलसता चेहरा देखकर धृति का शक यकीन में बदल गया कि किसी बात को लेकर बहुत परेशान है वो, वरना ऐसा व्यवहार नहीं करता उससे।
क्या हुआ है आपको? कोई परेशानी है क्या? किसी बात को लेकर बहुत विचलित हैं आप। रोकते रोकते भी धृति के दिल से निकले ये सवाल उसके लबों पर आ ठहरे थे, और अर्णव जैसे किसी गहरी नींद से जागा था। उसे एहसास हुआ कि अपनी परेशानी में धृति के लिए कितना सख्त रवैया अपना लिया था उसने। कुछ शर्मिंदा सा हो गया वो, और नजरें चुराते हुए नरम अंदाज में जवाब दिया, नहीं, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, पर आपको देखकर लग तो नहीं रहा। एक और सवाल उठा दिल में, पर उसने उस सवाल को लबों पर न आने दिया। कुछ पल खामोशी से उसे तकती रही, फिर उस पर से निगाहें फेर ली। कुछ लम्हे खामोशी से गुजर गए, फिर उस खामोशी को चीरती हुई अर्णव की सर्द आवाज धृति के कानों में पड़ी, जब तुम इस रिश्ते को निभाना ही नहीं चाहती, मुझे अपना पति मानती ही नहीं, तो फिर कल व्रत रखने के लिए हाँ क्यों कहा? इनकार कर देती दादी को, कोई भी बहाना बनाकर बात टाल देती। जब तुम्हारी नजरों में इस रिश्ते की कोई अहमियत है ही नहीं, तो इसके लिए खुद को तकलीफ पहुँचाने के लिए तैयार क्यों हुई? धृति उसका सवाल सुनकर झटके से उसकी ओर पलटी और तीखी निगाहों से उसे घूरते हुए तंजिया अंदाज में बोली, क्योंकि आपकी तरह पत्थर दिल नहीं मैं, जिसके आगे दूसरों की इच्छाओं, उनकी खुशियों और अरमानों की कोई अहमियत ही नहीं। आपके जितनी बहादुर, हिम्मत वाली और खुदगर्ज नहीं मैं, जो सिर्फ अपने बारे में सोचें और हर सही गलत काम डंके की चोट पर करे। एक आम सी सीधी साधी सी लड़की हूँ, जो किसी का दिल दुखाने से डरती है, जो गलत करने से कतराती है, जिसके लिए उसके अपनों की खुशी उसकी खुशी से पहले आती है, क्योंकि अपने कारण मैं किसी को दुखी नहीं देख सकती। यही वजह थी कि मैं इस नाटक में आपका साथ नहीं देना चाहती थी, क्योंकि आपकी फैमिली की भावनाओं के संग खेलना नहीं चाहती थी। पर आपने मेरी नहीं सुनी, अपनी फैमिली के सामने आपने मुझे अपनी बीवी बनाकर खड़ा कर दिया है, और अब आपकी उसी बीवी से कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, उन पर मुझे खरा उतरना होगा आपकी खातिर, उनकी इच्छाओं को पूरा करना होगा आपके कहे उस झूठ के खातिर, न चाहते हुए भी ये करना होगा, क्योंकि आपके परिवार का दिल नहीं दुखा सकती, उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकती। वैसे भी मैंने आपको पहले ही कहा था कि जब तक मैं यहाँ इस घर में आपके परिवार के बीच आपकी पत्नी बनकर हूँ, मैं एक अच्छी पत्नी और बहू होने के सभी फर्ज पूरी ईमानदारी से निभाऊंगी। धृति ने गंभीरता से अपना फैसला सुनाया और वहाँ से चली गई, जबकि अर्णव वहीं खड़ा बस उसे देखता ही रह गया। धृति का पहला करवा चौथ था और घर में सुबह से ही रौनक थी। दादी और शालिनी जी ने सरकी से लेकर पूजा की तैयारियों तक हर चीज को खास बनाया था। मेहंदी से लेकर कपड़े गहनों तक सब कुछ बेहद खूबसूरती से हुआ। धृति सबकी खुशी में शामिल तो थी, लेकिन अंदर से बेचैन। अर्णव सुबह ही किसी जरूरी काम से निकल गया था, लेकिन जाने से पहले घर की सुरक्षा के सख्त आदेश दे गया था। दोपहर में सब अपने अपने कमरों में थे और धृति अकेले अपने कमरे में मेहंदी में अर्णव का नाम देख रही थी। रंग गहरा था, लेकिन उसका मन सूना और वीरान। तभी फोन की तेज घंटी ने उसे चौंका दिया। स्क्रीन पर अनजान नंबर था। कुछ पल सोचकर उसने कॉल उठाई। हेलो
धृति। धृति बेटा, मैं बोल रही हूँ तेरी माँ। मैं जानती हूँ बेटा कि तू मुझसे बहुत नाराज है, अपनी माँ से नफरत करती है, मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, और मैं इसी काबिल हूँ। पर बेटा, इस वक्त तेरी माँ को तेरी बहुत ज़रूरत है। मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं धृति, और मैं मरने से पहले एक बार अपनी बच्ची से मिलना चाहती हूँ। अपनी माँ पर तरस खा ले बेटी, बस एक बार मुझसे मिलने आ जा, ताकि मैं तुझे देखने और तुझसे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने के बाद सुकून से मर सकूँ। फ़ोन के दूसरी तरफ से गमगीन, आंसुओं में भीगी, कमज़ोर, बिखरी हुई सी आवाज़ आई, जिसे सुनकर धृति के होश उड़ गए। पहले तो अचानक कोमल जी के फ़ोन से वो हैरान थी। उस पर उनकी कमज़ोर, बिखरी हुई आवाज़ और अजीब अजीब बातें उसे कुछ गलत होने का अंदेशा दे रही थीं। उसका दिल घबराने लगा और उसने बेचैनी से सवाल किया, माँ, माँ, क्या हुआ आपको? आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? टू बी कंटिन्यूड।